नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय का नाम है संस्कृति संवेदना ने पाया राष्ट्रव्यापी विस्तार। ये पुस्तक, जैसा कि हम जानते हैं, गायत्री परिवार की सह संस्थापिका वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा के जीवन पर आधारित है।
जी,
आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वंदनीय माताजी की जो राष्ट्र के लिए गहरी चिंता थी, वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक आंदोलन में बदली। मेरा मतलब है, ये अश्वमेध महायज्ञों की जो राष्ट्रव्यापी श्रृंखला चली, कैसे हुआ ये सब, तो स्रोत हमारे पास यही अध्याय है। चलिए इसी पर बात करते हैं।
बिल्कुल, ये अध्याय असल में हमें बताता है कि गुरुदेव के श्रद्धांजलि समारोह के बाद वंदनीय माताजी राष्ट्र की जो प्राण शक्ति है, उसकी भीतरी ऊर्जा, उसे जगाने के लिए और भी ज्यादा कह सकते हैं व्याकुल हो गईं। वो लगातार सोच रही थीं कि कोई ऐसा अनुष्ठान हो, कोई ऐसा तरीका हो जिससे राष्ट्र की संस्कृति संवेदना, मतलब हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, हमारे मूल्य हैं, उनके प्रति एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता वो पूरे देश में फैले।
अच्छा, तो ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए कुछ करने की एक तीव्र इच्छा थी। और इसी सोच के बीच वो अचानक हिमालय यात्रा पर चली गईं। ये बात थोड़ी मतलब चिंताजनक भी लगी होगी अनुयायियों को।
हाँ, चिंता तो हुई थी। सबको डर था कि कहीं वो हिमालय में ही ना रह जाएं, या शायद महासमाधि न ले लें। गुरुदेव के जाने के बाद संसार उन्हें थोड़ा सूना भी लग रहा था, पर उन्होंने सबको विश्वास दिलाया था कि वो लौटेंगी, शांति कुंज में ही रहेंगी।
अच्छा।
और हिमालय में, खासकर गंगोत्री के पास वो जो भगीरथ शिला है, वहाँ ध्यान के बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्यता थी, एक प्रसन्नता थी, जैसे कोई बड़ा संकल्प ले लिया हो उन्होंने।
जैसे कोई दिशा मिल गई हो। और फिर हिमालय से लौटकर उन्होंने क्या घोषणा की, यहाँ से कहानी एकदम बदल जाती है।
राष्ट्र फिर से समर्थ बने, सशक्त बने।
अश्वमेध यज्ञ, ये तो ऐतिहासिक रूप से सम्राट किया करते थे, तो यहाँ इसका क्या मतलब था?
हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से तो ये सम्राट अपनी संप्रभुता और कल्याण के लिए करते थे, यहाँ इसे राष्ट्र जागरण के लिए एक नए रूप में एक आध्यात्मिक प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि वो स्वयं इन यज्ञों में उपस्थित रहेंगी।
स्वयं उपस्थित रहेंगी?
हाँ।
इस घोषणा का क्या असर हुआ होगा? एक तो दिव्य प्रेरणा की बात, और फिर उनका खुद शामिल होने का वादा।
अनुयायी थे, उनमें गजब का उत्साह भर गया। हर कोई चाहने लगा कि उनके क्षेत्र में ये यज्ञ हो। फिर वंदनीय माताजी के निर्देशन में ही यज्ञों का पूरा कर्मकांड, उसकी विधि सब तैयार हुई। अखंड ज्योति पत्रिका का एक विशेषांक भी निकला 1992 का, उसमें सारी जानकारी थी। और फिर जयपुर से ये महायज्ञों की श्रृंखला शुरू हो गई।
अच्छा, जयपुर से शुरुआत हुई। और ये यज्ञ कहाँ कहाँ हुए फिर, मतलब इनका विस्तार कितना था?
ये यज्ञ भारत के लगभग हर कोने में हुए। जयपुर के बाद भिलाई, भुवनेश्वर, लखनऊ, फिर चित्रकूट, बड़ौदा, भोपाल, नागपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, कई बड़े शहरों में। और इनका स्वरूप भी बहुत भव्य होता था। कई राज्य सरकारों ने तो उन्हें राजकीय अतिथि का सम्मान दिया, सरकारी विमान तक उपलब्ध कराए।
राजकीय अतिथि का सम्मान, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इससे पता चलता है कि आंदोलन का प्रभाव कितना व्यापक था, राजनीति से भी ऊपर। उस समय के कई मुख्यमंत्री जैसे दिग्विजय सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, बीजू पटनायक जी, चिमन भाई पटेल जी, और राज्यपाल भी जैसे मोहम्मद शफी कुरेशी, मोतीलाल वोरा जी, और तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबने उनके राष्ट्र वात्सल्य को महसूस किया।
कमाल है, इतनी बड़ी श्रृंखला, इतने बड़े आयोजन, नेताओं का आना जाना, इन यात्राओं में वंदनीय माताजी का आम लोगों से, साधारण जनों से कैसा जुड़ाव रहा? क्या वो मिल पाती थी सबसे?
यही तो उनकी खासियत थी, इतनी व्यस्तता के बाद भी वो सबसे मिलती थी, चाहे कोई बहुत बड़ा नेता आए या कोई एकदम साधारण सा व्यक्ति। अनुयायी अगर आग्रह करते थे तो उनके घर भी जाती थी। लोग बताते हैं कि इससे कई घर तो जैसे तीर्थ बन गए। जहाँ वो बैठी, उस जगह को कई लोगों ने अपनी पूजा की जगह बना लिया।
चित्रकूट की यात्रा तो खास तौर पर याद की जाती है। उनकी सेहत उस समय थोड़ी नासाज थी, फिर भी वो प्रभु श्रीराम और माता सीता से जुड़े हर स्थान पर गईं। वहाँ स्फटिक शिला पर बैठकर उन्होंने एक बात कही थी, देखो तो सही, समय बदलने के साथ कितना कुछ बदल गया है। त्रेता युग में कुछ और था, अब कुछ और है। ये बात बहुत गहरी है।
वाकई गहरी बात है, समय का बदलाव और सनातन मूल्यों का एहसास। तो अगर हम सार देखें तो इन यज्ञों और यात्राओं का मूल संदेश क्या था? ये सिर्फ कुछ धार्मिक रस्में थीं या इससे बढ़कर कुछ?
नहीं, ये सिर्फ रस्में नहीं थीं, इनका मूल उद्देश्य था राष्ट्र के प्राणों में, मतलब देश की सामूहिक चेतना में एक नई ऊर्जा भरना, नई स्फूर्ति लाना। ये माना जाता था कि सामूहिक यज्ञ और जो आध्यात्मिक संकल्प लिए जाते हैं उनसे एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वंदनीय माताजी की उपस्थिति, उनके कार्य, उनसे अनगिनत लोगों के जीवन में एक नई रोशनी आई और उनकी इस देशव्यापी यात्रा का असर ये भी हुआ कि विदेशों में जो अनुयायी थे उनमें भी तीव्र इच्छा जागी कि माताजी उनके यहाँ भी आए, जिसके बाद फिर विश्व यात्रा की भी तैयारी शुरू हुई।
तो हमने देखा कि कैसे वंदनीय माताजी की जो राष्ट्र के प्रति गहरी चिंता थी और उनकी अपनी आध्यात्मिक अनुभूति, उसने अश्वमेध महायज्ञों का रूप लिया। एक राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन जिसने लाखों लोगों को तो प्रेरित किया ही, साथ ही राष्ट्र की सामूहिक चेतना को भी जगाने का एक प्रयास किया।
बिल्कुल, ये यात्रा सही में दिखाती है कि कैसे किसी की व्यक्तिगत साधना और राष्ट्र सेवा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ सकती हैं और एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती हैं।
सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, क्या यज्ञ जैसे जो प्राचीन अनुष्ठान है वो आज के इस आधुनिक समाज में हमारे राष्ट्र की ऊर्जा को क्या वो आज भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।
विचारणीय प्रश्न है।